जयधवला पुस्तक छठी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं प्रणमयूणनन्तजिणं अनन्तनाणेन दिट्ठसौवर्ठम् कमपदेश विहत्तिम् ओच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति उषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक में जो अभी हम प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार देख रहे हैं, उसमें हम पृष्ठ संख्या 59 पर आगे 59 यहाँ भागा भाग की बात चल रही थी। उत्तर प्रकृति विभक्ति में पहले हमने सन्निकर्ष देखा है और भी भागा भाग देखा है। भागा भाग का अर्थ है कौन से प्रकृति को कितना द्रव्य जाता है। हमने देखा है जितना मोहिनी के खाते में परमाणु की संख्या है, द्रव्य आता है, ये संचित द्रव्य की बात है ना। बंद में भी ऐसा ही बंटवारा होता है और संचय की अपेक्षा भी ऐसा है। और यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही थी, उत्तर प्रकृति विभक्ति में उत्कृष्ट से प्रयोजन बताया था, इसलिए यहाँ गुणित कर्मांशिक जीव को लिया। पहले एक बार बताया ना, यहाँ गुणित कर्मांशिक की बात है। तो वहाँ कैसे बंटवारा होता है, तो जितना द्रव्य है उसके अनंत भाग कर दो, यानी अनंत से भाग दे। एक भाग प्रमाण सर्वघाती का द्रव्य है, बहुभाग देशघाती का द्रव्य है। देशघाती में किसमें किसमें जाता है, तो संज्वलन 4 और 9 नौकाशय में जाता है। तो उसके क्या करना है, उसको अवलिका असंख्यात भाग का भाग देना, एक भाग अलग रखना, दो समान भाग करना, एक कषाय का एक नौकाशय का। और जो एक भाग अलग निकाला था उसका बहुभाग कषाय में और एक भाग नौ कषाय में लेना। नौ कषाय का बंटवारा कैसा होता है हमने देखा था, हाँ, तो उसमें भी ऐसे अवलिका संख्या तो उसके 5 भाग करना। पहला बहुभाग बहुभाग ऐसे हम देते हैं ना, समान भाग के बाद बहुभाग बहुभाग। तो पहला वेद को, फिर रति को यानी रति अरति, फिर हास्य शोक, उसके बाद भय और बाद में जुगुप्सा। कषाय वाला द्रव्य कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमने देखा था, उसमें भी ऐसे एक भाग करके वो बहुभाग बहुभाग 4 भाग करना। तो पहला लोभ को, फिर माया को, फिर क्रोध को, फिर मायन को, ये हमने देखा है। अब ये जो सर्वघाती है वहां तो 13 है मिथ्यात्व और 12 कषाय, उसमें भी ऐसे बहुभाग बहुभाग करके पहले समान भाग करना और फिर बहुभाग बहुभाग। तो पहला जाता है मिथ्यात्व को, उसके बाद अनंतानुबंधी लोभ माया क्रोध मान, फिर प्रत्याख्यानवर। देखो ये क्रोध फिर मान लेना, लोभ माया क्रोध और मान, हाँ? नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। क्योंकि हमने अनुभाग में भी ऐसा ही देखा था, अनुभाग में भी ऐसा देखा था कि ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस संज्वलन में कम है या इसमें, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो ये हमने ये बातें देखी थी, तो जब उसका कथन किया था।
एक बात ध्यान रखना, कर्णन युग में ऐसा क्यों, इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। यानी आपका कहना ठीक है कि ये उलट पुलट कुछ तो भी हो जाता है, लेकिन जो केवली के ज्ञान में आया है वो कथन है और उसे हम कुछ चैलेंज नहीं कर सकते, ना अल्टर करना चाहिए।
हाँ। अब इसी का विशेषा देखते हैं। इसको हमने अल्प बहुतों में देखा था, हमने पहले बहुभाग बहुभाग से देखा, तो जिसमें लास देते हैं तो अल्प बहुतों में उसमें सबसे थोड़ा है करके ले लेंगे। अब ये जो सभी प्रकृतियां हैं कितनी है, 28 है,
24,
उसमें अल्प बहुत्व बताया था कल, 24 इसलिए लिया था हमने,
दो वेद और दो,
हाँ, दो वेद और एक युगल उसमें कम कर दिया था। विशेषार्थ पहले लिखाए हैं कि सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व तो प्रकृति का बंध नहीं होता, इसलिए बंध काल में दर्शन मुनि का जो द्रव्य मिलता है, ख्याल में आई बात, जितना मिथ्यात्व तो के खाते में आता है उसी में से वो दो प्रकृतियां तैयार हो। तो पहले हमने मिथ्यात्व तो को कितना आता है उसको अभी हमने देखा था, 13 में से वो बहुभाग वाला मिथ्यात्व तो में जाता है, तो मिथ्यात्व के जितने हैं उसमें से बंटवारा होगा। तो बंध काल में दर्शन मुनि का जो द्रव्य मिलता है वह सब का सब मिथ्यात्व तो प्रकृति को मिल जाता है। जब अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव को उपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तो सम्यक्त प्राप्त होने के प्रथम समय में ही सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व रूप कर्मांशों की उत्पत्ति हो जाती है। सबसे पहले उत्पत्ति कब होती है उसकी, तो कहते हैं सम्यक उपशम सम्यक तो होता है, तब सादी वाले को भी हो सकता है, अनादि वाले को भी हो सकता है। तो सम्यक तो प्राप्त होने के प्रथम समय में ही सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व रूप कर्मांशों की उत्पत्ति हो जाती है, ये पहले ही समय में। जैसे चाकी में दले जाने से, चाकी ने वो चक्की, धान्य तीन रूप हो जाता है, चावल रूप, छिलके रूप और चावल के कण, तथा छिलके मिले रूप, तीन के न, चावल रूप और छिलके रूप और तीन दोनों का मिश्र ऐसा। उसी तरह अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा दला जाकर दर्शन मुनि कर्म भी मिथ्यात्व सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाता है। एक्चुअली अनिवृत्तिकरण के बाद में हो जाता है, परंतु उसमें पहले, क्योंकि इसमें तो केवल उपशमित होता है, और जो तीन रूप हो जाना वो उपशम सम्यक के पहले समय से हो जाती बात है। आगे लिखा है उपशम सम्यक तो प्राप्त होने के प्रथम समय से ही मिथ्यात्व के प्रदेश गुण संक्रमण भागहार के द्वारा, ये भागहार के द्वारा संक्रमित होना इसका अर्थ होता है कितने परमाणु हैं उसको विशिष्ट संख्या, जो गुण संक्रमण भागहार है उससे भाग देंगे, जो एक भाग आएगा उतने एक समय में संक्रमित हो गए, उसके द्वारा सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व रूप में परिणमित होने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ गुण संक्रमण भागहार का प्रमाण पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, किंतु सम्यक मिथ्यात्व में प्रदेशों को लाने के लिए जो गुण संक्रमण भागहार है उससे सम्यक्त प्रकृति में प्रदेशों को लाने में निमित्त गुण संक्रमण भागहार असंख्यात गुणा है। इस भागहार, हाँ बड़ा है, भागहार बड़ा है,
नहीं सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्व में कम जाते हैं और सम्यक्त में माल ज्यादा जाता है।
कल हमने देखा था सम्यक मिथ्यात्व का सबसे थोड़ा है,
थोड़ा है सम्यक्त,
और सम्यक्त्व का उससे विशेष अधिक है। अब देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं, हाँ देखो वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो यहाँ भागहार ज्यादा है उसका, भागहार जागदा यानी कम परमाणु, क्योंकि मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति, ऐसा भी हम देख सकते हैं ना, या डायरेक्ट सम्यक प्रकृति में फिर भी उसका भागहार वहाँ बड़ा है, बड़ा
यहाँ पे बड़ा बताया है,
हाँ
माल कम,
हम पहले पूरा पढ़ेंगे ना,
हाँ।
इस भागहार के द्वारा उपशम सम्यक दृष्टि जीव पहले समय में सम्यक मिथ्यात्व में बहुत प्रदेश देता है। क्या है पहले समय में सम्यक मिथ्यात्व में जो संक्रमित होते वो प्रदेश ज्यादा है, सम्यक्त्व में उससे असंख्यात गुणे हीन प्रदेश देता है। किंतु आया प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व में जितना द्रव्य देता है उससे असंख्यात गुणा द्रव्य दूसरे समय में सम्यक्त्व में देता है। और उससे असंख्यात गुणा द्रव्य उसी दूसरे समय में सम्यक मिथ्यात्व में देता है। तीसरे समय में सम्यक मिथ्यात्व से असंख्यात गुणा द्रव्य सम्यक्त्व में और उससे असंख्यात गुणा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में देता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त पर्यंत गुण संक्रमण भागहार होता है, यानी अंतर्मुहूर्त तक तो सम्यक मिथ्यात्व के ही परमाणु ज्यादा हो गए। किसी एट एनी गिवन समय, पहले समय में क्या पोजीशन है, सम्यक्त्व से सम्यक मिथ्यात्व में असंख्यात गुणा है, क्योंकि ऐसा हम कहेंगे ना, सम्यक्त्व से सम्यक मिथ्यात्व में आए और फिर सम्यक प्रकृति में आए, या डायरेक्ट भी आएंगे, फिर भी इससे वो असंख्यात गुणाहीन है। पहले समय में जितने हैं दूसरे समय में
वही प्रपोर्शन
देता है, वही यानी उसका जो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का वो असंख्यात गुणा और उससे भी सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुणा, फिर तीसरे समय में सम्यक प्रकृति का उससे असंख्यात गुणा और सम्यक मिथ्यात्व का उससे असंख्यात गुणा। पंचलब्धि में ये लिया है लास्ट लास्ट में, हम यहाँ पढ़ेंगे पहले। हर समय ऐसा ही है कि सम्यक मिथ्यात्व में ही ज्यादा जाता है जब तक गुण संक्रमण भागार है। पहले समय में कितना मिथ्यात्व में से अभी जो कोई ये सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र और ये सम्यक प्रकृति, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, यानी इसमें असंख्यात गुणा है और इसमें असंख्यात व भाग है। असंख्यात के लिए अगर हम यहाँ एक कहेंगे और यहाँ चार कहेंगे, चार गुणा यानी असंख्यात गुणा। दूसरे समय में क्या है, पहले समय के सम्यक मिथ्यात्व से दूसरे समय का जो सम्यक प्रकृति है वो असंख्यात गुणा, यानी ये चार चौक 16 यहाँ हो गए और उससे सम्यक मिथ्यात्व असंख्यात गुणा तो 64 हो गए दूसरा समय में। तीसरे समय में ये 64 से ये चार गुणा और उससे ये चार गुणा, किसी भी समय में सम्यक मिथ्यात्व का ज्यादा है असंख्यात गुणा है। ये तो यहाँ तक तो अभी गुण संक्रमण की बात आई, ये तो मिश्र है और ये सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व। पहले समय में सम्यक प्रकृति में एक है तो सम्यक मिथ्यात्व में चार यानी असंख्यात गुणा है। दूसरे समय में इस चार से असंख्यात गुणा यानी 16 यहाँ हो गए और उसी समय में सम्यक मिथ्यात्व का 64 हो जाएगा। तीसरे समय में 64 से चार गुणा करना और उससे चार गुणा सम्यक मिथ्यात्व में देना, तो ये गुण संक्रमण जिसको कहेंगे गुणित प्रमाण में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा। अब आगे पढ़ेंगे तो अंतर्मुहूर्त पर्यंत गुण संक्रमण भागहार होता है। उपशम सम्यक्त्व के द्वितीय समय से लेकर जब तक मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है तब तक सम्यक मिथ्यात्व का भी गुण संक्रमण होता है। क्या कहते हैं, ये मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति हुई गुण संक्रमण के द्वारा, अब सम्यक मिथ्यात्व का भी गुण संक्रमण चालू होता है। हाँ, अंगुल के असंख्यात वे भाग रूप प्रतिभाग से भाजित होकर, पहले पल्ले का असंख्यात भाग दिया था उसके, अब यहाँ कहते हैं अंगुल के असंख्यात वे भाग रूप प्रतिभाग से भाजित होकर सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य प्रति समय सम्यक प्रकृति में संक्रमित होता है। पहले समय में तो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति हुई, दूसरे समय में मिथ्यात्व में से तो चलेगा ही चला, सम्यक मिथ्यात्व का भी सम्यक प्रकृति रूप होगा, उसका भागार बहुत बड़ा है। हाँ, ये पल्ले का संख्या था, वो अंगुल का संख्या था। अतः इन तीनों प्रकृतियों के प्रदेश सत्कर्म का भागा भाग जानने के लिए मिथ्यात्व के भाग के तीन भाग करो। पहला भाग मिथ्यात्व का द्रव्य है, दूसरे भाग में पल्ले के असंख्यातवे भाग से भाग देकर जो लब्ध आवे उसे उसी भाग में से घटा देने पर जो द्रव्य शेष रहे वह सम्यक्त्व का द्रव्य है। तीसरे भाग में कुछ कम पल्ले के असंख्यातवे भाग से भाग देकर जो लब्ध आवे उसे उसी भाग में से घटाने से जो शेष बचता है वह सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य होता है। ऐसे ही दूसरा प्रकार भी समझना चाहिए। ऐसा करने से सबसे कम द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व का होता है। देखो क्या किया था हमने, दूसरा जो भाग है ना उसके पल्ले के असंख्यातवे भाग से भाग दिया और उसको घटाया, तीसरे में से भागाकार बढ़ा दिया था, सॉरी कम किया था,
कम किया तो
भागाकार कम कर दिया था तो संख्या बड़ी आई, तो बड़ी संख्या माइनस कर दी, बड़ी संख्या को माइनस किया ना, वहां से भागाकार छोटा लिया, लब्ध ज्यादा आया वो समान भाग में से माइनस किया, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सबसे थोड़ा, सम्यक्त्व का उससे ज्यादा, मिथ्यात्व का सबसे ज्यादा। ये बात ख्याल में है कि मिथ्यात्व में से गुण संक्रमण होता है वैसे सम्यक मिथ्यात्व में से भी चालू हो जाता है। मिथ्यात्व में क्या, देखो पहले समय में क्या हुआ, मिथ्यात्व के पांच परमाणु संक्रमित हुए, उसमें से एक गया सम्यक प्रकृति में और चार गया सम्यक मिथ्यात्व में। दूसरे समय में कितने, 80 परमाणु, असंख्यात गुणा 80 परमाणु संक्रमित हुए, तो 80 में से 16 गए सम्यक प्रकृति में और 64 गए सम्यक मिथ्यात्व में। अब परंतु दूसरे समय से क्या हो रहा है, इसमें से भी कुछ परमाणु इसमें चले जा रहे हैं, संक्रमण गुण संक्रमण इसका भी चल रहा है। हाँ, मिथ्यात्व में से तो 80 आए ही आए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब ये 64 में से भी 16 में चले जाएंगे, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सम्यक्त्व से भी सॉरी सम्यक मिथ्यात्व से सबसे कम, सम्यक प्रकृति के ज्यादा और मिथ्यात्व के सबसे ज्यादा। ख्याल में, हाँ 64 को अंगुल के असंख्यातवे भाग से भाग देंगे, यानी वो भी उसमें एडिशन होता चला जाएगा। हाँ 16 में मिल जाए।
क्या इसका अर्थ हम ऐसा लेवे कि दूसरे समय से मिथ्यात्व में से भी सम्यक्त्व में जा रहा है और सम्यक मिथ्यात्व में से भी सम्यक प्रकृति में जा रहा है?
हाँ ऐसा ही समझना।
हाँ, तो यानी उसके अंदर जास्ती माल रहेगा। हाँ,
क्योंकि अभी इसके पास है असंख्यात गुणा परमाणु, परंतु उसमें से कितना ही बाल सम्यक प्रकृति में चला जाए।
तो जो आपने अल्टीमेटम रिजल्ट यह बताया कि सबसे ऊंचा माल रहेगा सम्यक मिथ्यात्व में,
हाँ।
उससे अधिक होगा सम्यक प्रकृति में,
हाँ।
और सबसे जास्ती होगा मिथ्यात्व में,
ऐसा ही है। अच्छा,
डिफिकल्ट लगती है क्योंकि पहले पल्ले का असंख्यात भागाकार और पीछे अंगुल का असंख्यात भाग है,
हाँ।
तो वो भागाकार बढ़ गया, तो इसमें जो संक्रमण होगा वो कम हो रहे,
पर मूल वहाँ पल्ले का असंख्यात्व भाग के से भाग दिया था,
हाँ।
फिर भी वहाँ तो परमाणु की संख्या मूल मिथ्यात्व की लेनी है, और अभी जो हम भाग दे रहे हैं
सम्यक मिथ्यात्व का,
हाँ उसका द्रव्य भी उतना प्रमाण में कम है, भले उसके परमाणु कम भी हो जाए, फिर ये तो गुण संक्रमण तो केवल अंतर्मूर्त तक चलता है।
तो सभी द्रव्य में तो कोई संक्रमण नहीं होता है, खाली ये
समी द्रव्य में ही होता है।
नहीं नहीं, ये मिथ्यात्व के बारे में, बाकी कोई प्रकृति में। अच्छा, ये यहाँ पे तो तीन का उपशम हुआ है,
इन्हीं का ये जो उपशम जो है ना, इसी में संक्रमण चलता है। उपशमित द्रव्य में ही संक्रमण होता है, पूर्ण उपशमित हुए बिना संक्रमण शुरू भी नहीं हो रहा है। अन्य प्रकृति में किसमें? चारित्र मुनि और दर्शन मुनि में ऐसा ऐसा उपशम है, ऐसा उपशम। बाकी अन्य रूप परिणमने का कार्य तो अप्रशस्त उपशम में तो चलता ही रहता है। जैसे अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम है तो वह अप्रत्याखंड प्रत्याखंड रूप से उदय में आ रहा है, संज्वलन रूप से। यानी उपशम अवस्था में संक्रमण नहीं होता, ये बात नहीं है। उपशम में क्या है? उदय में नहीं आना, उसमें संक्रमण तो चलता है। ये अभी हमने देखा है, ऐसा करने से सबसे कम द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व का होता है। ये नीचे से पांचवी छठी लाइन चल रही है, उससे अधिक द्रव्य सम्यक्त्व का होता है और उससे भी अधिक मिथ्यात्व का द्रव्य होता है। आलापों के संक्षेप अर्थात अल्प बहुत्व में अनंतानुबंधी लोभ से सम्यक मिथ्यात्व का जो विशेष द्रव्य जो विशेष अधिक कहा, उसका कारण यह है, यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य ग्रहण किया है।
अनंतानुबंधी का लोभ से क्या, अनंतानुबंधी का मान माया मान का चाहिए ना?
उल्टा है ना, उल्टे जा रहे हैं ना। देखो, मिथ्यात्व के बाद हमने मान लिया था अनंत अनुबंधी लोभ को, अल्प भूतों में पहला नाम किसका आएगा? अनंत अनुबंधी मान का आएगा, फिर क्रोध का आएगा, माया का आएगा, लोभ का आएगा, फिर मिथ्यात्व का नंबर आएगा। परंतु मिथ्यात्व में से हमने तीन प्रकृति बनाई, इसलिए लोभ के बाद पहला नंबर किसको होगा? सम्यक मिथ्यात्व का। देखो, यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य ग्रहण किया है और उसका स्वामी दर्शन मुख की क्षपना करने वाला जीव जब मिथ्यात्व का सब द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में क्षेपण कर देता है तब होता है। ये ख्याल में आई बात कुछ? सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य कब होता है? तो यहाँ तो मिथ्यात्व में से थोड़ा थोड़ा दोनों में चला गया, पर जब क्षपना होती है तो मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमित हो जाता है, तब उसका द्रव्य उत्कृष्ट होगा। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति के विषय में भी जानना चाहिए, सम्यक प्रकृति का कब उत्कृष्ट होगा? अब ये सम्यक मिथ्यात्व में आए ना, मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का मिलकर हुआ, वो सारा का सारा सम्यक प्रकृति रूप होगा, तब उसका सम्यक प्रकृति का भी उत्कृष्ट द्रव्य होगा। यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही है, इसलिए अपना प्रकरण ही उत्कृष्ट के स्वामित्व का चल रहा है, क्योंकि हमने ये अपना विषय जो है ना। भागा भाग की बात चल रही 50 पृष्ठ से एकदम अंतिम लाइन में, उत्कृष्ट से प्रयोजन है। यानी स्वामित्व का कथन करने वाले ये जो 11 अनुयोग द्वार है उसी में गर्भित है, उसमें से उत्कृष्ट का भागा भाग की बात यहाँ चल रही है। तो उत्कृष्ट से प्रयोजन है तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बताना है, तो वो किसके होता है? तो दर्शन मौखिक क्षपणा करने वाले मिथ्यात्व का जब उसमें ट्रांसफर होता है तब। ये तो ओघ से बात बताई, अब आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म को लेकर इसी प्रकार भागा भाग करना चाहिए। इतना विशेष है कि मिथ्यात्व के भाग के असंख्यात खंड करके उनमें से एक खंड प्रमाण सम्यक मिथ्यात्व का भाग होता है, इसका कारण सुगम है। उसका असंख्यात भाग होता है ना, असंख्यात भाग ही न प्रदेशों की संख्या, असंख्यात भाग ही न संख्यात भाग है, नहीं समझे? सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु जितने हैं उसको हमने गुण संक्रमण का भाग हार दिया था, तो वो असंख्यात होता है। तो असंख्यातवा भाग ही उसमें घटा ना, असंख्यातवा भाग उसमें संक्रमित होता है, तो मिथ्यात्व से इसके परमाणु असंख्यातवे भाग हीन है, सम्यक प्रकृति के उससे असंख्यातवे भाग हीन हो जाएंगे। जब संक्रमण होता है तब की बात चल रही, ख्याल में आई बात मानुबेन, ख्याल में आई बात। और उसका अनुभाग की अपेक्षा बात करेंगे तो अनंत गुणाहीन होगा। मिथ्यात्व के अनुभाग से सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणाहीन, और सम्यक मिथ्यात्व के अनुभाग से सम्यक प्रकृति का अनुभाग उससे भी अनंत गुणाहीन।
सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक
प्रकृति, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति, क्योंकि हमने देखा ना सम्यक मिथ्यात्व वो सर्वघाती वालों में जाएगा, दारू वाला सर्वघाती वाला नीचे का पार्ट, और सम्यक प्रकृति का वो दारू वाला नीचे का और फिर लता भाग वाला।
तो यहाँ पे योग भी तो बताया सम्यक मिथ्यात्व भाग उससे विशेष हो जाए, वो विशेष अधिक विशेष अधिक की जगह यहाँ पे असंख्यात,
ये जो है ना उत्कृष्ट द्रव्य की बात, हाँ, करना
यहाँ पे सपना नहीं होती वो अपेक्षा से यहाँ,
हाँ,
असंख्यात।
उत्कृष्ट कब होता है? क्षपणा के काल। तो क्षपणा के काल में क्या है, मिथ्यात्व का सारा इसमें आ गया है,
वो तो मनुष्य गति नहीं
होगा, और फिर इसका सारा सम्यक प्रकृति में चला जाएगा। एट ए टाइम तीनों को नहीं लेना है। जब सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होता है तब उसकी जो संख्या है उससे सम्यक प्रकृति का जब उत्कृष्ट होता है तब उसकी संख्या ज्यादा है। और मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब होगा? जब इन दोनों में नहीं गया था तब होगा, तो उसका उत्कृष्ट उससे सबसे ज्यादा है। उत्कृष्ट से प्रयोजन है इसलिए ऐसा होता है। अब आदेश से हम पढ़ रहे हैं, बात ख्याल में आई? उत्कृष्ट का स्वामित्व लेकर उसका भागा भाग बताया। आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण को लेकर इसी प्रकार भागा भाग करना चाहिए। इतना विशेष है कि मिथ्यात्व के भाग के असंख्यात खंड करके उनमें से एक खंड प्रमाण सम्यक मिथ्यात्व का भाग होता है, इसका कारण सुगम है। तथा नो कषाय के उत्कृष्ट सत्कर्म को लेकर भागा भाग करने पर नो कषाय के सब द्रव्य का एक पुंज करो, फिर उसमें तत्प्रायोग्य संख्यात रूपों से भाग देने पर वहां एक खंड प्रमाण संख्यात रूप बतायवाना। एक खंड प्रमाण द्रव्य हास्य रति का होता है, इसलिए उसे घटाकर अलग रखना चाहिए। फिर शेष द्रव्य को उसके योग्य संख्यात रूपों से खंडित करके उनमें से एक खंड को पृथक रखो, फिर शेष द्रव्य को आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करके लब्ध एक भाग को घटाकर पृथक स्थापित करो, बाकी बचे द्रव्य के समान सात भाग करो तथा दूसरी बार घटाए हुए संख्यात्वे भाग के तीन समभाग करके पहले दूसरे और तीसरे समान भागों में मिला दो। फिर आवली के असंख्यात्वे भाग का अवस्थित विरलन करके पहले घटाए हुए असंख्यात्वे भाग मात्र द्रव्य के आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण खंड करके विरलित राशि पर दे दो। हम फिर इसको दोबारा देखेंगे। उनमें से एक खंड को छोड़कर शेष सब खंडों को लेकर यानी बहुभाग को लेकर पहले भाग में मिलाने पर पुरुष वेद का भाग होता है, फिर शेष बचे एक खंड को पूर्व विधान के अनुसार देकर अर्थात आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करके उसके ऊपर शेष बचे एक खंड के आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण खंड करके दे दो। उनमें से एक खंड को छोड़कर बाकी बचे सब खंडों को लेकर दूसरे भाग में मिलाने से भय का भाग होता है। पहला भाग पुरुष वेद का हुआ था। हम पहले पढ़ लेते हैं, ये पहला बहुभाग पुरुष वेद को दिया, फिर दूसरा भय को दिया, उसी बाकी बचे एक खंड को अवस्थित विरलन राशि के ऊपर समान खंड करके दो, उनमें से एक एक खंड को छोड़कर उत्तरोत्तर शेष बहुत खंडों को तीसरे आदि भागों में मिला क्रम से मिलाने पर जुगुप्सा, नपुसक वेद, अरति, शोक और स्त्री वेद के भाग होते हैं, जो क्रम से विशेषहीन विशेषहीन होते हैं। पहले हमने ओघ में सभी वेदों को एक ही बड़ा भाग दिया था, अब यहाँ उसमें तीन वेदों को अलग निकाला है। इतना विशेष है कि नपुसक वेद, अरति और शोक के भागों में बंद काल के प्रतिभाग के अनुसार, बंद काल का प्रतिभाग यानी बंद काल में हमने देखा था कौन सा बंद काल बड़ा होता है, याद है कितने काल तक बनता है?
17-16।
नहीं वो बात नहीं है,
वो तो एक
हमने देखा था ना, एक कौन से नौ कषाय में बंद काल कौन सा बड़ा होता है, संक्रमण की अपेक्षा हमने उसको देखा था। नपुसक वेद का बंद काल कितना है, फिर हास्य का कितना है, ये बात हमने देखी थी। नहीं नहीं वो सत्ता की बात नहीं, बंद काल यानी कितने समय उन तक बंद हो रहा है उसको बंद काल कहा है। यहाँ देखते हैं, आगे लिखेंगे शायद विशेषार्थ में, मैंने भी नहीं पढ़ा। तो बंद काल के अनुसार संख्यात भाग मात्र द्रव्य का प्रक्षेप जानकर करना चाहिए, अर्थात इनमें से जिस प्रकृति का जितना बंधक काल है उसके प्रतिभाग के अनुसार यानी उसके परसेंटेज के अनुसार संख्यात वे भाग मात्र द्रव्य को जानकर उसका प्रक्षेप उस अपने द्रव्य में करना चाहिए। अब हास्य रति के द्रव्य को लेकर उसका अलग लिखा था ना, सबसे पहले हास्य रति को दिया था, आप याद है ऊपर लिखा था उन्होंने, पहला ही वो संख्यात्वा भाग हास्य रति को दिया था। आवली के असंख्यात्वे भाग से उसे भाजित करके लब्ध एक भाग को उसमें से घटाकर शेष द्रव्य के दो समान भाग करो, उनमें से एक भाग में पहले घटाए हुए एक भाग द्रव्य को लेकर जोड़ने पर रति का भाग होता है और दूसरा भाग हास्य का होता है। यानी एक भाग अलग निकाला था, फिर दो समान भाग किए, फिर बहुभाग और एक भाग किया। यहाँ हास्य से लेकर पुरुषवेद पर्यंत स्वस्थान भागा भाग का आलाप चाहिए, आलाप हुआ आलाप कहकर अब संक्षेप से सब आलापों को कहेंगे, आलाप आलाप आलापों को कहेंगे, वह इस प्रकार है। ये नारकियों की बात चल रही है, हमने क्या क्या देखा था देखो, अभी नारकियों में उत्कृष्ट प्रदेश सत्व की बात चले, उसका भागा भाग करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि मिथ्यात्व के असंख्यात भाग वाला सम्यक मिथ्यात्व का है, ये बात बताई। फिर नौ कषाय की बात डायरेक्ट उठाई उन्होंने, तो फिर उनको पहले में पहले उन्होंने संख्यात से भाग दिया, एक भाग अलग रखा वो हास्य और रति का मिला हुआ भाग, बाद में उसमें फिर असंख्यात भाग निकाला, दो समान भाग किए, बहुभाग रति को दिया, फिर हास्य को दिया, परंतु पहले में पहले संख्यात भाग अलग निकाला और वो हास्य और रति को दिया। बाद में जो बचा हुआ है संख्यात बहुभाग, फिर उसको आवली के असंख्यात में भाग से भाग दिया, एक भाग अलग रखा और बाकी के सात समान भाग किए, अभी नौ में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बंद काल की अपेक्षा उसकी डिवीजन हो रही है।
यहाँ पे सबसे ज्यादा भाग पुरुष वेद में जाता है,
वो सात में से सबसे बड़ा भाग, सात में से बड़ा भाग पुरुष वेद को जाएगा,
पीछे
भाई को अभी सात समान भाग किए ना, अभी उसमें फिर डायरेक्ट वही चालू करना है, बहुभाग बहुभाग वगैरह। देखो यहाँ क्या किया, बाकी बचे द्रव्य के समान सात भाग किए। और फिर दूसरे भाग वो जो देखो क्या किया है शुरू में, मैं इसी में बताती हूँ आपको। पहला विशिष्ट द्रव्य था, उसका संख्यात्वा भाग अलग निकाला, वो किसको दिया? हास्य और रति को दिया। फिर जो शेष बचा है, मान लेते हैं हम पांचवा छठा कोई भी दसवा भाग जो कोई है, संख्यात्वा भाग निकाला वो हास्य रति को दिया। अब जो यहाँ फिर बचा उसका भी संख्यात्वा भाग निकाला वो अलग रखा, ये जो बाकी बचा था उसके सात भाग किए। कैसे? इसमें से भी वो अवलिक असंख्यात्व भाग से भाग देकर ये अलग रखना एक भाग, और फिर उर्वरित के सात समान भाग किए। और ये जो संख्यात्व भाग निकाला था वो पहले तीन भागों में समान भाग में मिला दिए। फिर जो अवलिक असंख्यात्व भाग बचा था उसका बहुभाग 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 करेंगे, वो पहले पुरुष वेद में, फिर दूसरे भय में, फिर जुगुप्सा नपुसक वेद अरति शोक और स्त्री वेद। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है।
हाँ।
क्या किया था हमने? पहले जो कोई एक्स वैल्यू थी उसको संख्यात का भाग दिया, एक भाग यह हमने बाकी निकला बाकी रख दिया। जो बहुभाग था उसको फिर संख्यात्वा भाग से भाग दिया, फिर वो संख्यात्वा भाग भी अलग रखा। ये दूसरी बार का संख्यात्वा भाग यानी दूसरा संख्यात्वा जो बचा उसको फिर आवली के असंख्यात्व भाग से भाग दिया, आवली का असंख्यात्व भाग ये अलग निकाला, फिर उसके साथ समान भाग किए। ये जो संख्यात्व भाग यहाँ अलग निकाला था उसके तीन भाग करके तीन में दे दिए, पहले तीन में दे दिए, जहां पुरुष वेद जुगुप्सा और नपुसक वेद आने वाले। और फिर उसमें वो आवली के असंख्यात भाग का भी बहुभाग बहुभाग इसमें सब में साथ में देते रहे। तो अब इसका अल्प बहुत्व कैसा होगा वो अभी हम पढ़ेंगे, विशेषात में ये बात फिर आएगी दोबारा। देखो ये 62 पृष्ठ पर चौथी लाइन में अभी जो आलाप है उसको कहेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व का भाग थोड़ा है, सबसे पहले पॉइंट पर उससे अप्रत्याख्यानावरण मान का भाग असंख्यात गुणा है, ये सबसे थोड़े को पहले लिया। हमेशा हम किसको लेते हैं?
सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व को लेते हैं।
ओग में सबसे सबसे कम किसको लिया था?
अप्रत्याख्यानावरण मान।
अनंतानुबंधी लोभ के बाद वो अधिक में लिया था।
हाँ।
क्योंकि ओघ क्योंकि ओघ में उत्कृष्ट क्षपणा में होता है।
हाँ। यहाँ पे सम्यक तो नहीं लिया
क्या? यहाँ नहीं होता वो,
क्योंकि उसकी
क्षपणा में जो उत्कृष्ट होता है इसलिए अनंतानुबंधी लोभ के बाद उसको लिया था, अल्प बहुत्व में बहुत्व की ओर लिया था उसको। अब सबसे अल्प सम्यक मिथ्यात्व का लिया, ख्याल में कुछ बात? यहाँ उत्कृष्ट में अल्प बहुत्व लगा रहे हैं। जब ओघ का उत्कृष्ट कहते हैं तो किसका उत्कृष्ट कब होता है उसकी बात नहीं है, जब कभी होता है उत्कृष्ट उसमें अल्प बहुत्व लगाया था। तो उसमें सबसे अल्प किसका था? उत्कृष्ट में सबसे हाँ अप्रत्याख्यानावरण मान, फिर उल्टे क्रम से अनंतानुबंधी लोभ तक गए।
हाँ। और उसके पश्चात
दर्शन मोहिनी की तीन लगाए थे।
सम्यक मिथ्यात्व
तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट जो है वो उसका
में होता है।
फिर सम्यक्त्व का उत्कृष्ट और मिथ्यात्व का उत्कृष्ट ये वहाँ अल्पबोध लिया था। अब वैसा यहाँ तो नहीं हो सकता,
सम्यक मिथ्यात्व का अल्प अल्प लिया
नारकी है ना, तो यहाँ तो क्षपणा नहीं होती है, इसलिए अल्प बहुत्व में सबसे जघन्य प्रदेश विभक्ति जो है
सम्यक मिथ्यात्व।
जघन्य में कौन सी? उत्कृष्ट में सबसे अल्प जघन्य नहीं ले रहे, उत्कृष्ट में सबसे अल्प, सम्यक मिथ्यात्व का पहला नंबर। आगे भी पढ़ेंगे तो हम कहां किसको फिट करते देखेंगे। उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण मान का भाग असंख्यात गुणा है। अभी आगे तो जैसे हमने पहले लिए थे उससे क्रोध का भाग विशेष अधिक है। क्रोध यानी अप्रत्याख्यानावरण ही समझना, उससे माया का भाग विशेष अधिक है और उससे लोभ का विशेष अधिक। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण मान का भाग विशेष अधिक है, उससे क्रोध का भाग विशेष अधिक है। उससे माया का भाग विशेष अधिक है और उससे लोभ का भाग विशेष अधिक है। ये आठ हुए ना,
आठ और सब में मिथ्या तो पहले तो नौ हो
गए। नौ हो गए
अभी अनंत अनुमति का।
एक मिनट है, यहाँ मेरा ही कुछ नंबरिंग में मेरा ही गलत हुआ। अभी हमारे एक सम्यक मिथ्यात्व और ये आठ, ये हो गए आठ और नौ, लोग को नौ हो गए। उससे अनंतानुबंधी मान का भाग विशेष अधिक है, ये चारों को ले लेंगे अभी। उससे क्रोध का भाग विशेष अधिक है, उससे माया का विशेष अधिक है और उससे लोभ का विशेष अधिक है। ये तेरह हो गए। अब सम्यक्त्व का भाग विशेष अधिक है, ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पे सपना का लास्ट समय होता है जो,
हाँ, कृतकृत्य वेदक यहाँ आ सकता है। लास्ट समय भी नहीं लेना,
कृतकृत्य वेदक का अंतर्मूर्त,
कृतकृत्य वेदक जो अंतर्मूर्त पहले आया है यहाँ पर, तो उसका सारा मोहनीय का द्रव्य भी सम्यक प्रकृति रूप में है। मिथ्या तो संक्रमित हुआ था, सम्यक मिथ्या तो भी इसमें आया है पूरा, और अभी सपना पूरी नहीं हुई है, अभी अंतर्मूर्त बाकी है उसके लिए, तो उसका मैक्सिमम द्रव्य है यहाँ पर नारकी के लिए। मैक्सिमम नारकी के लिए सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट कब होगा? कृतकृत्य के साथ जो नरक में उत्पन्न हुआ है उसके उत्कृष्ट है प्रदेश विभक्ति,
वो भी अंतर्मूर्त के पहले समय में।
हाँ, अंतर्मूर्त के पहले समय में, क्योंकि प्रति समय उसके कितनी सारी निर्जरा हो जाएगी, सम्यक प्रकृति खिर जाएगी एक एक समय में, एक एक निषेक। इसलिए यहाँ सम्यक्त्व का ये अनंतानुबंधी लोक के बाद नंबर आया। उससे मिथ्यात्व का भाग विशेष अधिक है, यानी जब कभी मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है तब उसको लेना है हमें। उससे हास्य का भाग अनंत गुणा है।
कि हमने आगे तो देखा उसमें पुरुष वेद ने सबसे ज्यादा दिया था, यहाँ पे हर्ष्य लिया पहले, वो कैसे हो गया?
हास्य को पहला संख्या तो भाग निकाला था।
अच्छा।
अलग से वो पुरुष वेद का हम अल्प से देख रहे हैं ना।
अच्छा, पुरुष वेद का सबसे कम था
पहला बहुभाग जिसको देते हैं।
हाँ हाँ।
वो बड़ा है, उसको लास्ट में बताएंगे। तो हास्य का भाग अनंत गुना है, उससे रति का भाग विशेष अधिक है, उससे स्त्री वेद का भाग संख्यात गुना है।
हाँ।
क्योंकि वो हमने संख्यात वा भाग अलग निकाला था, फिर ये संख्यात बहुभाग के हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इसलिए वो संख्यात गुना हो गया। उससे शोक का भाग विशेष अधिक है, उससे अरति का भाग विशेष अधिक है। कितने हुए? हाँ, 20 हुए। उससे नपुसक वेद का भाग विशेष अधिक है, जिस क्रम से हमने दिया ना उसका उल्टा क्रम। उससे जुगुप्सा का भाग विशेष अधिक है, उससे भय का भाग विशेष अधिक है, ये 23 नंबर। उससे पुरुष वेद का भाग विशेष अधिक है, ये नौ कषाय में हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखा था उसको यहाँ बता रहे हैं। यानी पहले वो 13 प्रकृतियां ली थी, 13 और 2 15 हो गए, मिथ्या तो में से दो और बनाई, उसके बाद सभी नौ कषाय लिए, अब कौन रहे? संज्वलन रह गए थे, क्योंकि नौ कषायों से संज्वलन आदि कषाय देशघाती में कषायों को ज्यादा माल जाता है, तो उसमें अभी लगाएंगे नंबर। उससे मान संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, उससे क्रोध संज्वलन का भाग विशेष अधिक है। जिस क्रम से हम बहुभाग देते उसके उल्टे क्रम से यहाँ देखें, उससे माया संज्वलन का भाग विशेष अधिक है और उससे लोभ संज्वलन का भाग विशेष अधिक है। इस भागा भाग के कथन के अवसर पर अल्प बहुत्व का कथन करना असंबद्ध है, यह मानकर उसका अनादर नहीं करना चाहिए। यानी कुछ अटपटा लगता है, असंबद्ध है, इसलिए कोई बात नहीं, ये बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भागा भाग विषय निर्णय करने के लिए ही अल्प बहुत्व विषय का आलाप कहा गया है। यानी भागा भाग में अल्प बहुत्व का क्या प्रयोजन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये कोई बिना कारण की बात नहीं, असंबद्ध नहीं है, विषय को छोड़कर नहीं है, ये कहना चाहते सुसंबद्ध है। अतः वह सुसंबद्ध है, लिखा ना, क्यों भागा भाग का निर्णय होने के लिए अल्प बहुत्व का आलाप कहा है। भागा भाग में तो अधिक से कम तक आते हैं, वो तो बता चुके, इसको इतना भाग दिया, इतना इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, और फिर उसी की दृढ़ता के लिए फिर अल्प बहुत्व से और थोड़े से लेकर उत्कृष्ट तक बता दिया। इसी प्रकार पहली पृथ्वी क्यों, जहां जहां ये जो सम्यक प्रकृति का होता है ना उत्कृष्ट, कहाँ कहाँ हो सकता है, जहां जहां कृतकृत्य उत्पन्न होते हैं, हाँ, तो पहली पृथ्वी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, योनिमति को छोड़ा, सामान्य देव और सौधर्म स्वर्ग से लेकर भवनत्रिक को छोड़ा, सर्वार्थ करना, सवर्थी हुए, सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी से लेकर छह पृथ्वियों में कॉमा लगाना, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि दर्शन मुनि की तीनों प्रकृतियों के द्रव्य के असंख्यात खंड करके उनमें से बहुत खंड तो मिथ्यात्व के भाग होते हैं, शेष बचे खंडों के असंख्यात खंड करो, यानी पहला बहुभाग तो मिथ्यात्व में गया, बहुत से खंड जो बचे हैं उसमें से फिर असंख्यात खंड करो, उनमें से बहुखंड प्रमाण द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व का भाग होता है और शेष एक भाग सम्यक का होता है। जो पहले हमें लगता है ना कि सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति तैयार होती है, तो सम्यक प्रकृति के सबसे कम होने चाहिए, नरक में तो ऐसा ही है, वहां जो अन्य अल्पभूत्व देखा था हमने ओघ में, तो उत्कृष्ट स्वामित्व की अपेक्षा देखा था, जो मनुष्यों में और ओघ में पॉसिबल है दर्शन मोनी की क्षपना में। जहां क्षपना नहीं हो रही है वहां मिथ्यात्व का सबसे ज्यादा, उससे सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुणाहीन, उससे सम्यक का असंख्यात गुणाहीन।
अभी जो देखा उसमें सम्यक तो पहला आ जाएगा, पीछे सब बाकी ऐसे ही।
हाँ, अल्प बहुत में पहला सम्यक को ले लेंगे नाम। यहाँ आलाप कहते हैं सम्यक का भाग थोड़ा है, पहले पॉइंट पर कहा ये पहले नरक में तो वहां तो सम्यक मिथ्या तो को लिया था और फिर सम्यक का नंबर तो 14 आया था। यहाँ पर जहाँ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न नहीं होते हैं वहां पर सम्यक्त्व का नंबर पहला आएगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व का भाग असंख्यात गुणा है। ख्याल में है ना डिफरेंस? ये हमें जो लगता है ना इसको असंख्यात गुणा होना चाहिए, हाँ यहाँ पर है, परंतु वहां तो उत्कृष्ट की अपेक्षा बात थी, इसलिए वो दर्शन मौखिक सपना में घटाया था, और यहाँ तो अन्यत्र घटाएंगे। उसके पश्चात अप्रत्याख्यान मान का असंख्यात गुना होता है, क्रोध का भाग विशेष अधिक होता है, माया का भाग विशेष अधिक होता है, आगे संज्वलन लोभ के भाग पर्यंत पहले कही हुई रीति के अनुसार आलाप कहना चाहिए, यानी आगे तो क्रम वही रहेगा, यानी अनंतानुबंधी लोभ के बाद मिथ्यात्व का नंबर आएगा, फिर आगे नो कषाय, फिर कषाय, अर्थात जैसा पहले कहा है वैसा ही कहना चाहिए, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, सभी मार्गणाओं में ऐसा ही बताना चाहिए। अब इसी का विशेषार्थ आदेश की बात चलेगी। आदेश से नारकियों में भी मुनि के प्रदेश सत्कर्म का भागा भाग ओघ की ही तरह होता है। अंतर केवल इतना है कि एक तो यहाँ सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का भागा भाग सबसे थोड़ा है, दूसरे नौकषायों के विभाग में कुछ अंतर है जो कि मूल में बतलाया ही है। पहले हमने ओघ में जो देखा था कि हास्य और शोक को एक खाते में रखा था, रति अरति को एक खाते में, तीनों वेद का एक मिलाया हुआ बताया था, यहाँ नौ के नौ अलग अलग बताया। उसका खुलासा इस प्रकार है, नौ कषाय के सब द्रव्य का एक पुंज बनाकर उसमें उसके योग्य संख्यात से भाग दो, लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य हास्य रति का होता है, अतः उसे अलग स्थापित कर दो, शेष द्रव्य में फिर संख्यात से भाग दो और लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को अलग स्थापित कर दो, शेष द्रव्य में फिर आवली के असंख्यात भाग से भाग दो और लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को अलग स्थापित कर दो। यानी हमने दो अलग स्थापित किए, एक संख्यात्वा भाग और बचे हुए का असंख्यात्वा भाग, अवली का असंख्यात भाग से भाग दिया था ना, अब क्या करना, बाकी बचे द्रव्य के सात समान भाग कर दो। दूसरी बार संख्यात का भाग देकर जो द्रव्य स्थापित किया था, ये दूसरी बार यानी अभी यहाँ से चार लाइन ऊपर का,
पहले आशीर्वादी का निकला था उसके पश्चात,
पहला जो भाग किया था योग्य संख्यात से भाग दो, वो पहली बार
हास्यरति के लिए,
पहला बार संख्यात, और फिर वो हास्यरति का निकालने के बाद फिर संख्यात से भाग दिया था, ये दूसरा संख्यात, बाद में फिर आवली के असंख्यात विभाग से भाग दिया था, अब उसके बाद सात समान भाग किए, दूसरी भाग बार संख्यात का भाग देकर जो द्रव्य अलग स्थापित किया था उसके तीन समान भाग करके सात समान भागों में से पहले दूसरे और तीसरे भाग में एक एक भाग को मिला दो, फिर आवली के असंख्यात विभाग से भाग देकर जो एक भाग पृथक स्थापित किया था उसमें आवली के असंख्यात विभाग से भाग देकर, यानी इसका बहुभाग बहुभाग करो, एक भाग को छोड़कर शेष सब द्रव्य को पहले समान भाग में मिलाने से पुरुष वेद का भाग होता है जो नौ कषाय में सबसे अधिक भाग है। क्या किया, पहले संख्यात के भाग देने पर वो हास्य रति को दे दिया, दूसरी बार संख्यात से भाग दिया था वो अलग रखा, फिर बचे हुए को आवली के असंख्यात भाग से भाग दिया वो भी अलग रखा, ये संख्यात से भाग देकर अलग रखे हुए से तीन समान भाग किए, वो किस में, वो आवली का भाग दिया था ना, उसके बाद बचे हुए के सात समान भाग किए थे, सात में से पहले तीन में वो संख्यात भाग के भाग करके मिला दिए, और ये आवली का असंख्यात भाग से भाग देकर जो बाद बचा था उसमें बहुभाग लेना, पुरुष वेद में देना, फिर बचे हुए के फिर बहुभाग करना, वो फिर आगे गाड़ी चलेगी। छोड़े हुए एक भाग में आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग छोड़कर बाकी बचे शेष द्रव्य को दूसरे पुंज में मिला देने पर भय का भाग होता है। शेष एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देकर एक भाग को छोड़कर बाकी बचे द्रव्य को तीसरे भाग में मिलाने पर जुगुप्सा का भाग होता है। इसी प्रकार आगे भी बाकी बचे एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देता जाए और बहुभाग को यानी बहुभाग बहुभाग आदि को चौथे आदि पुंज में मिलाता जाए। ऐसा करने से क्रमशः नपुसक वेद, अरति, शोक और स्त्री वेद का भाग उत्पन्न होता है। किंतु नपुसक वेद, अरति और शोक के संबंध में कुछ विशेषता है। बात यह कि इन तीनों का द्रव्य लाते समय आवली के असंख्यातवे भाग को प्रतिभाग न मानकर इनके बंद काल को प्रतिभाग मानना चाहिए। वो है अंतर्मूर्त, फिर भी आगे आगे वाला उसे संख्यात गुना वगैरह है। और जिस इस प्रकार जो उत्तरोत्तर संख्यात भाग द्रव्य प्राप्त हो उसे समान पुंज में मिलाकर इनका भाग प्राप्त करना चाहिए। क्या कहते हैं, जिसका बंद काल बड़ा है ना, किससे प्रतिभाग करना है?
बंद भाग से,
बंद काल से।
हाँ। तो उसमें कम द्रव्य जाएगा,
कम द्रव्य जाएगा। जिसका बंद काल बड़ा है उसमें कम द्रव्य जाएगा, तो वो भाग देने पर जो प्राप्त होगा, हमने जो सात समान किए थे उसमें मिला देना, मिलाकर इनका भाग प्राप्त करना चाहिए। हास्य और रति का, वो हास्य हुआ, हास्य और रति का पहला संख्यातवा भाग निकाला था ना, भाग दोनों को मिलाकर निकाला था, अभी दोनों में बंटवारा होगा। हास्य और रति का द्रव्य जो अलग स्थापित कर आए थे उसका बंटवारा भी मूल में बतलाई गई विधि के अनुसार कर लेना चाहिए। यानी वो आवली का असंख्यातवा भाग भाग से भाग देना, बहुभाग के दो समान भाग करना, फिर बचे हुए एक भाग का बहुभाग है वो हास्य में देना, रति में दिया था ना पहले, फिर हास्य में दिया था, है ना?
हास्य में सबसे ज्यादा है,
नहीं नहीं,
हास्य में बहुभाग दिया था और रति में एक भाग दिया था, रति में कम है।
एक में
हास्य का मथ्यात्व, हास्य का भाग अनंत गुणा है। अच्छा, रति का भाग विशेष है,
रति का ज्यादा है। पहला हमने रति में दिया, फिर बाद में हास्य में दिया, 62 पृष्ठ के पहली लाइन में है। अल्पबहुत्व में भी देखा होगा ना आपने, हास्य से रति का विशेष अधिक है। इस प्रकार अभी हम 64 पृष्ठ पर आए हैं, सेकंड लाइन लास्ट में। इस प्रकार भागाभाग करने पर नौ नौकशा में किस क्रम से भागाभाग प्राप्त होता है तथा मोहिनी की सब प्रकृतियों में किस क्रम से भागाभाग प्राप्त होता है, इसका उल्लेख मूल में किया ही है। इस प्रकार सामान्य नारकियों में प्रत्येक प्रकृति को जिस क्रम से द्रव्य प्राप्त होता है वह क्रम प्रथम पृथ्वी आदि कुछ मार्गणाओं में अविकल घट जाता है। आदि कुछ में नहीं है, जहाँ जहाँ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न होते हैं वहाँ पर सामान्य तिर्यंच है, देव है सर्वार सिद्धि से, सॉरी सौधर्म से सर्वार सिद्धि तक, क्योंकि उसमें भी कृतकृत्य है, इसलिए सम्यक प्रकृति का जो क्रम है वो उसमें भी बैठ जाता है। पर कुछ विशेषता है जिसका उल्लेख मूल में किया ही है, नहीं मैंने कुछ रह गया। दूसरी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकी आदि आदि कुछ मार्गणाएं हैं जिनमें यह क्रम अविकल बन जाता है, पर कुछ विशेषता है जिसका उल्लेख मूल में किया ही है। यानी समय प्रकृति को सबसे थोड़े में ले लेंगे और बाद वो आगे का वही क्रम रहेगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जहाँ जो प्रक्रिया संभव हो उसके अनुसार भागा भाग जान लेना चाहिए, यानी जहाँ जो उत्कृष्ट उसमें पॉसिबल है वहाँ उसको जान लेना चाहिए। ये उत्कृष्ट में अल्प बहुत्व और भागा भाग बताए, जहाँ उनके उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है विशिष्ट प्रकृतियों का, उत्तर प्रकृतियों का, जहाँ कहाँ पॉसिबल है उसको वहां लिया है। अब यहाँ जघन्य की बात करेंगे। अब जघन्य से प्रयोजन है, ये जघन्य ने उत्तर प्रकृतियों के मूल प्रकृतियों में तो दसवें के अंत में हमने देखे थे, अब उत्तर प्रकृतियों में जहां जिसका जघन्य हो उसको वहां देखना है और उसमें हमें भागा भागा और अल्पबोध देखना है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोनी की कर्म की 28 प्रकृतियों के सब जघन्य द्रव्य को लेकर बुद्धि के द्वारा उस द्रव्य का एक पुंज करो, पुनः उसके अनंत खंड करके उनमें से एक खंड को पृथक स्थापित करो और शेष अनंत खंडों के द्रव्य को लेकर उस द्रव्य के संख्यात खंड करो। पहला अनंतवा भाग अलग निकाला, फिर शेष के संख्यात खंड किए, उनमें से एक खंड को पृथक स्थापित करके बाकी बचे संख्यात खंडों के द्रव्य के फिर संख्यात खंड करो और एक खंड को उसमें से घटाकर शेष बहुभाग द्रव्य में आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो। पहला तो अनंत का भाग देकर एक अलग निकाला, फिर दो बार संख्यात से अलग अलग बार पहला संख्यात से भाग दिया, फिर दोबारा संख्यात से भाग दिया, दोनों भाग अलग निकाले थे, फिर अभी आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दिया। लब्ध एक प्रमाण भाग प्रमाण द्रव्य को उसमें से घटाकर शेष द्रव्य के समान पांच भाग करो। दूसरी बार अलग स्थापित किए गए संख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य के तीन समान भाग करके पांच समान भागों में से पहले दूसरे और तीसरे भाग में एक एक भाग को मिला दो। फिर आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करके पहले घटाकर अलग स्थापित हुए असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य के समान भाग करके उस पर दे दो, यानी वो असंख्यातवा भाग निकाला था ना, उसका एक भाग बहुभाग करना। उन भागों में से बहुभाग द्रव्य को लेकर पांच भागों में से पहले भाग में जोड़ने पर लोभ संज्वलन का भाग होता है। एक कषायों की बात चल रही, पहला अनंतवा भाग वो तो सर्वघाती का होगा, फिर जो द्रव्य का है
उसका संख्यात दो बार,
उसमें से संख्यातवा भाग अलग निकाला था, शेष बचे एक भाग के समान भाग करके पूर्व कहे विधान के अनुसार विरलित राशि पर एक एक भाग को दे दो, उनमें से भी एक भाग को छोड़कर, यानी इसके आगे ऐसा ही समझना कि एक एक भाग को छोड़कर बहुभाग बहुभाग लेना है। पहला हमने संज्वलन लोभ में दिया, फिर एक भाग को छोड़कर शेष सब भागों को लेकर पांच भागों में से दूसरे भाग में जोड़ देने पर भय का भाग होता है। अभी यहाँ हमें जघन्य देखना है ना, इसलिए अकेले कषाय और नौ कषाय की बात नहीं ली, दोनों में ले लिया उसके। बाकी बचे एक भाग के समान भाग करके पूर्व विधान के अनुसार विरलित राशि पर एक भाग दो, उनमें से एक भाग को छोड़कर शेष सब भागों को एकत्र करके पांच भागों में से तीसरे भाग में मिलाने देने पर जुगुप्सा का भाग होता है। हमें इतना ही देखना है, पहला संज्वलन लोभ का नंबर है, दूसरा भय, तीसरा जुगुप्सा। फिर बाकी बचे एक भाग को उसी प्रकार विरलित राशि पर देकर उसके बहुभागों में से उसके भागों में से बहुभाग को पांच भागों में से चौथे भाग में मिलाने पर अरति का भाग होता है, ये चौथा। बाकी बचे एक भाग को पांचवें भाग में मिलाने पर शोक का भाग होता है, ये पांचवा। यहाँ जुगुप्सा भय और लोभ का द्रव्य अरति और शोक से संख्यातवे भाग अधिक कहना चाहिए। जुगुप्सा भय और लोभ का द्रव्य अरति और शोक से संख्यात विभाग अधिक क्यों? अधिक होने का कारण यह है, ये प्रकृतियां ध्रुवबंदी है। क्या कहना चाहते? ध्रुवबंदी प्रकृतियां कौन कौन सी है मोहिनी की?
मोहिनी
की
19
कौन सी?
16 कषाय,
मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा। और कौन सी ध्रुवबंदी नहीं है? 3 वेद
और
2 युगल। इसलिए यही बात कहते हैं, जुगुप्सा, भय और लोभ तो ध्रुवबंदी है, अरति और शोक तो प्रतिपक्षी वाली है, ध्रुवबंदी नहीं है। इसलिए अन्य का तो द्रव्य ज्यादा होगा, क्योंकि इनका बंद होवे न होवे, उन तीनों का तो बंद होता ही है। अतः हास्य और रति के बंद काल में भी अधिक द्रव्य संचय को प्राप्त करती है। कौन सी? जुगुप्सा, भय और लोभ है, वो रति और शोक का बंद हो या हास्य और रति का बंद हो, उनका तो द्रव्य संचित हो ही रहा है, जुगुप्सा, भय और लोभ का। किंतु अरति और शोक ध्रुवबंदी नहीं है, वो बंदी हुआ, बंदी करना, अतः इनका द्रव्य भयादिक से हीन होता है। फिर पहली बार घटाकर अलग रखे हुए संख्यात वे भाग मात्र द्रव्य के, पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण खंड करो, उनमें से एक खंड को पृथक स्थापित करके शेष सब खंडों के द्रव्य में आवली के असंख्यात वे भाग से भाग दो। लब्ध एक खंड को पृथक स्थापित करके शेष सब द्रव्य के 2 समान भाग करो। पहले बार संख्यात वा भाग अलग निकाला था ना, उसकी बात चल रही। 2 बार संख्यात से भाग दिया था और तीसरी बार असंख्यात से भाग दिया था। ये पहली बार देकर जो अलग रखा था उसकी बात चल रही है। तो पहला जो संख्यात वा भाग निकाला था उसके पल्ले से भाग देकर जो संख्या आई ना, असंख्यात वा भाग, उसको अलग रखा। फिर बचे हुए को आवली के असंख्यात वे भाग से भाग दिया, फिर उसको अलग रख के 2 समान भाग किए। उनमें से पहले भाग में पृथक स्थापित किए गए द्रव्य को मिलाने पर रति का भाग होता है और दूसरा भाग हास्य का होता है। जैसे हमने नारकियों में देखा था ना, पहला संख्या तो अभाग अलग निकाला था, फिर जो दूसरे थे उसमें, अभी यहाँ तो संबलन, लोभ, भय वगैरह इनको ले लिया है। फिर पहले घटाए हुए असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य को पल्ले के असंख्यात वे भाग से भाजित करके उसमें से लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को पृथक स्थापित करो। फिर बाकी बचे असंख्यात भागों को लेकर फिर भी उनके पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण खंड करो, उनमें से एक खंड को लेकर शेष सब द्रव्य के 2 समान भाग करो। उन भागों में से पहले भाग में उस एक खंड को मिलाने पर स्त्री वेद का भाग होता है और दूसरा भाग नपुसक वेद का होता है। स्त्री वेद से नपुसक वेद का भाग कम होने का कारण सुगम है। क्यों सुगम है? यहाँ जगन्य की बात चलती है। जगन्य प्रदेश कब हो गए उनके? क्षपणा के काल। नपुसक वेद की जब क्षपणा होती तो क्या होता है? स्त्रीवेद में परिणमित हो जाएंगे। तो परिणमित होने के बाद जब स्त्रीवेद की क्षपणा का काल आएगा तो उसमें परमाणु तो ज्यादा होगी ना, तो इसलिए नपुसक वेद के जगन्य से स्त्रीवेद के जगन्य ज्यादा हो गए।
पुरुष वेद की बात नहीं उठाई है उन्होंने, ये 6-9 कषाय को ले लिए पर पुरुष वेद किधर नहीं बताया।
अभी बताएंगे ना, अभी कहाँ पूरा हुआ है, अभी तो नपुसक वेद तक आ गए हम।
हाँ।
स्त्री वेद से नपुसक, फिर पहले घटाए हुए असंख्यात वे भाग में आगम के अविरुद्ध भागा भाग करने पर क्रोध संज्वलन का भाग थोड़ा होता है, मान संजुलन का भाव विशेष अधिक होता है, कितना अधिक होता है, तीसरे भाग मात्र अधिक होता है। यानी जैसे यदि क्रोध संजुलन का द्रव्य 6 है तो उसका तीसरा भाग 2 से अधिक, तो मान संजुलन का भव नहीं भाग 8 होता है। पुरुष वेद का भाग विशेष अधिक है, कितना अधिक है, 2 भाग मात्र अधिक है। अर्थात यदि मान संज्वलन का द्रव्य 8 है तो पुरुष वेद का द्रव्य 12 होता है, क्योंकि इनकी सपना पहले होती है ना, और जिनकी सपना बाद में होती है उनका द्रव्य भी उतना निर्जरित हो जाता है वहां पर, इसलिए वहां अकेले बंद की बात नहीं, यहाँ पर निर्जरा की बात है, जगन्य की बात चल रही है यहाँ पर। माया संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, ये इनका विशेष अधिक क्यों कहा, क्योंकि वो तो एक क्रोध सारे मान रूप मान माया रूप हो जाते हैं, इसलिए उनके थोड़े विशेष अधिक हो जाते हैं। विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है। इसका विशेषार्थ नहीं लिया है,
क्या सबसे ज्यादा संज्वलन लोभ में है?
सबसे ज्यादा नहीं,
हाँ संज्वलन लोभ में सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे जो अभी हमने देखा,
हाँ, संज्वलन लोभ का ज्यादा है।
पीछे भाई जुगुप्सा अरति शोक,
हाँ,
रति हास्य।
देखो इसका अर्थ क्या है, क्योंकि ये सारा उसमें परिणमित होता है, सारा ही संक्रमित, पूरे मोहनी का द्रव्य लोभ में आ जाता है जगन्य उसका लास्ट में, फिर भी पूरे के पूरा द्रव्य उसमें आ गया है।
तो यह एक समझ में नहीं आया, संज्वलन क्रोध पहले लिया, पीछे संज्वलन मान लिया, पीछे पुरुष वेद लिया और पीछे संज्वलन माया लिया, ऐसे क्यों लिया? पुरुष वेद बीच में बताया,
ऐसा भी है ना, उसकी क्षपणा होती है, जब क्षपणा होती है तो उसका कितना द्रव्य है ऐसा भी लेना है
लास्ट समय में,
हाँ। और इसके बाद उनकी होती तो उसकी वहाँ निर्जरा भी होगी, यानी हमें दोनों ही सोचना है। उसका उत्कृष्ट द्रव्य नहीं लेना है, जघन्य लेना है,
जघन्य में जघन्य,
हाँ। तो बाय दैट टाइम उसकी क्षपणा होते होते उसका खिर जाता है,
तो लास्ट समय में जितना द्रव्य,
हाँ।
होगा उसका,
ये भी ज्यादा आगे जब हम उसका स्वामित्व वगैरह डिटेल में देखेंगे ना,
ये थोड़ा गड़बड़
तो
हो जाती है,
तो उसका समझने में ज्यादा आसान,
हाँ?
हो जाएगा आगे का जब पढ़ेंगे।
नहीं ये थोड़ा है ना, ये वापस दिख सकते, क्योंकि इसमें थोड़ी गड़बड़
नहीं, उसका स्वामित्व कहे बिना इसके ये भागा भागी उन्होंने पहले ले लिया है, मेरे ख्याल से आगे उसका स्वामित्व आने वाला है, अभी छुट्टियों में पढ़ के रखना थोड़ा। तो आप भी हमको पढ़ाएंगे थोड़ा, है ना, हम आने के पहले, ये आगे आने वाली है बात, 79, 80, 81 वगैरह, कौन सा जीव है उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला वगैरह, क्योंकि हमें तो अभी केवल डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसका कारण समझ में नहीं आया ऐसा क्यों, जब उसका स्वामित्व
में वो बात करते हैं पीछे,
हाँ, ये टीडीएस हो जाता है, समझ में नहीं आता है, देखो थोड़ा आगे चलकर देखेंगे ना, कभी उसका जगन्य का जरा स्वामित्व कहीं दिखा, नहीं तो ये अभी तो होने वाला ही नहीं यहाँ पर, ये जो अभी हमने तो सर्वघाती की बात, देशघाती का बात हमने देशघाती की देख ली, सर्वघाती का तो हमने देखा ही नहीं है, हाँ। अभी ये जो जगन्य का आगे कहीं मिलेगा हमें स्वामित्व,
ये जगन्य में भी जो डिवाइड करते हैं वो तो हमने जो उत्कृष्ट देखा तो वही अपेक्षा डिवाइड होगा ना,
91 देखना, 91 के आगे जगन्य का स्वामित्व,
ये तो सपना में ही होगा ना, मनुष्य गति में ही होगा,
अभी देखेंगे ना, उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का स्वामित्व है यहाँ पर, उत्कृष्ट का बहुत है वो, 123 तक उत्कृष्ट ही है। एक सौ चौबीस से शुरू हुई जगह में वो तो बड़ा है, यानी वो तो क्षपित कर्मांशिक वाले को लेना पड़ेगा वहां, वो सूक्ष्म निगोदिया वगैरह वगैरह, ये जो हमने देखा ना अभी जो हमने दो देखा था उसकी बात देखेंगे। हमने जिसका अभी जो हमने देखा ना उसका जगह ने देखना है, संज्वलन लोग वगैरह को जो हमने देखा था बीच में 226 326 आए मेरे, हाँ 291।
तो जगदेह का स्वामी सप्रा में तो नहीं ले सकते, वहाँ पे तो उत्कृष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जगदेह तो ये सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त में लेना पड़ेगा। हाँ
291
सफित करना चाहिए
जगन योग स्थान वगैरह सब लिए। हाँ ये पुरुष वेद का पढ़ना है ना, पुरुष वेद का जगन ने पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा ही समय है।
पेज नंबर
291
जगरे का स्वामी तो अलग अलग जगह अलग अलग होगा, क्योंकि
अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग।
हाँ।
देखो ना यहाँ पुरुष वेद का जगन्य किसके होता है, नीचे के सूत्र में लिखा है, देखो जगन्य परिणाम योग स्थान में विद्यमान क्षपक ने, यानी क्षपक है परंतु उसका जगन्य योग चल रहा है। पुरुष वेद के उदय के अंतिम समय में जिस कर्म का बंध किया, जो ये नवक समय प्रबद्ध है ना, और वो भी अंतिम समय में किया, वह कर्म अपगत वेद के एक आवली काल जाने पर तदनंतर समय से संक्रमण को प्राप्त होता है, शुरू करता है। आवली के बाद उसकी एक एक फाली गिरेगी, और जब संक्रमण को प्राप्त होता है तब से वह गिरेगी, यानी क्या, वो तो संक्रमण से नष्ट होगा, तब से वह समय प्रबद्ध एक आवली के भीतर अकर्म भाव को प्राप्त होता है। एक आवली तक तो कुछ नहीं होता है, एक आवली के बाद उसका अकर्मपना यानी संक्रमण चालू हो जाता है, एक आवली काल में पूरा होता है। इसलिए इससे एक समय पीछे जाकर विद्यमान जीव के पुरुष वेद का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है, अंतिम समय में उसका ज्यादा हो जाएगा, उसके एक समय पहले लिया।
यह तो नवक समय प्रबंध है, उसमें तो नया बंध तो होता ही नहीं है, तो सेकंड लास्ट समय में क्यों लिया, लास्ट समय में होगा ना,
लास्ट समय में ज्यादा उसका होगा ना, एक मिनट।
नहीं ये तो नवक समय प्रबद्ध ही है, बाकी अभी तो नया बंध हो नहीं रहा है, तो जो एक समय प्रबद्ध बंधा था उसके लास्ट समय में कम हो जाएगा ना, एकदम कम से कम पुरुष वेद का द्रव्य।
हाँ सत्ता में वाला वो एक समय
लास्ट समय वाला
लास्ट लेना, समय वाला लेना, एक समय पीछे है ना वो अंतिम समय।
हाँ।
अकर्म भाव को प्राप्त होने के पहले वाला समय, वो समय लेना उसका, आवली का अंतिम वाला समय।
यह पुरुष वेद तो इस पे लिया है, मिथ्यात्व में ये सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त को बताया आगे।
हाँ मिथ्यात्व का भी हमने नहीं देखा, क्योंकि हमने देखा था ना अनुभाग में देखा था, क्षपणा में भी नहीं होता उसका।
हाँ।
इतना वो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त में होता है।
हाँ।
वहाँ की विशुद्धि तो और ज्यादा है,
और वो भी क्षपित कर्म उनसे को लेना पड़ेगा,
जघन्य में क्षपित वाले को ही लेना है, यानी वो अलग अलग जो कर्म है उसके अलग अलग पोजीशन पर उसके बताए गए। क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ते नहीं है, जैसे अभी हमने जो कौन सा अनुयोग पढ़ा था, अनुभाग में भी शुरू शुरू में कितने घोटाले होते थे अनुभाग विभक्ति में।
तो अभी तक हमने जो देखा ये जब सभी जो सज्जन नौ नौ कसाय वो तो मनुष्य गति में ही होगा, क्योंकि अभी तो उसकी बात हुई।
हाँ, ये तो ओघ से बात चल रही है ना, जघन्य की ओघ की अपेक्षा बात चल रही है, और जब जहाँ आदेश की बात आएगी वो आगे चलकर आदेश की बात देखेंगे। अब यहाँ आते हैं 66 पृष्ठ पर, एक पैराग्राफ होगा अपना, वैसे ये सारे भूलने वाले हैं, इसको खुद दोबारा रिपीट करेंगे।
हाँ, थोड़ा वो वापस लेना पड़ेगा, ये भागा भाग भी बहुत घोटाला होता है। हाँ। एक भाग लिया और एक बार
मैंने कहा वैसे अगर आप जो हुआ उतना भी पढ़ के रखेंगे ना।
हाँ।
थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी ज्यादा।
हाँ।
देखो 81 नंबर का पैराग्राफ पढ़ेंगे। देशघाती द्रव्य का भागाभाग कहकर, अब सर्वघाती द्रव्य का भागाभाग कहते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था
ये अनंत भाग जो अलग रखा था।
हाँ, अनंत भाग अलग रखा था पहले। सब द्रव्य में अनंत का भाग देकर जो अनंत वे भाग प्रमाण सर्वघाती द्रव्य अलग स्थापित किया था, उसको पल्ले के असंख्यात वे भाग से भाजित करके उसमें से एक भाग को पृथक स्थापित करो, शेष सब भागों को लेकर आवली के असंख्यात भाग से भाजित करके उसमें से भी एक भाग को पृथक स्थापित करो, और शेष सब द्रव्य के 8 समान भाग करो। पहले हमने कितने किए थे, 13 किए थे, अब 8 समान भाग करो। फिर आवली के असंख्यात भाग को अवस्थित विरलन करके पहले आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर जो एक भाग घटाकर अलग स्थापित किया था उसके समान विभाग करके इस विरलित राशि पर दे दो, यानी वो पहला वाला जो भाग रखा था अलग एक भाग, उसको फिर आवली के असंख्यात भाग से भाग दो। उन भागों में से एक भाग को छोड़कर शेष सब विरलित रूपों पर दिए गए भागों को एकत्र करके, यानी बहुभाग को 8 भागों में से प्रथम भाग में मिलाने पर प्रत्याख्यान लोभ का भाग होता है। इस प्रकार पुनः पुनः पहले कहे गए विधान को जानकर उसके अनुसार करने पर,
अर्थात आगे तो ये देशघाती प्रकृति की बात चल रही है,
प्रत्याख्यान सर्वघाती है ना,
पर ये देशघाती द्रव्य का भागा कर बताया ना,
देशघाती का कहाँ भागा है।
अच्छा अच्छा अच्छा,
देशघाती का कहकर अब सर्वघाती का कह रहे हैं। तो पहला भाग प्रत्याख्यान लोभ का, इसी प्रकार पुनः पुनः पहले कहे गए विधान को जानकर उसके अनुसार करने पर, अर्थात बाकी बचे एक एक भाग के इसी प्रकार विरलित राशि प्रमाण खंड कर करके और विरलित राशि पर उन्हें दे देकर तथा एक भाग को छोड़ शेष सब भागों को एकत्र करके बाकी बचे 7 समान भागों में क्रम क्रम से मिलाने पर प्रत्याख्यानावरण माया, क्रोध मान और अप्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोध मान के क्रमशः उत्पन्न होते हैं, यानी प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने पहले एक पल्ले का असंख्यात भाग वो बाकी रखा था, पल्ले को हमसे भाग देकर, पल्ले के असंख्यात भाग देकर एक भाग अलग रखा था ना। हाँ, उसकी बात करेंगे। पुनः पहले पल्योपम के असंख्यात भाग से भाग देकर घटाए हुए असंख्यात भाग मात्र द्रव्य को लेकर उसके पल्ले के असंख्यात भाग प्रमात्र खंड करके उनमें से एक खंड को छोड़कर शेष सब खंडों के मिलाने पर मिथ्यात्व का भाग होता है। जो एक भाग रखा था उसको फिर पल्ले का असंख्यात भाग देना, एक भाग को छोड़कर बहुभाग है वो मिथ्यात्व का द्रव्य। पुनः बाकी बचे असंख्यात भाग को लेकर उसके पल्ले के असंख्यात भाग खंड करके उनमें से एक खंड को पृथक स्थापित करके शेष सब खंडों को लेकर बहुभाग लिया, पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर बहुभाग लिया, उनमें अवली के असंख्यात विभाग से भाग दो, लब्ध एक भाग को पृथक स्थापित करके शेष सब द्रव्य के चार समान भाग करो। फिर अवली के असंख्यात विभाग का विरलन करके पृथक स्थापित किए गए द्रव्य को समभाग करके विरलन राशि पर दो, उनमें से एक भाग को छोड़कर शेष सब भागों को यानी बहुभाग को चार समान भागों में से पहले भाग में मिला देने पर अनंत अनुबंधी लोभ का भाग होता है। इसी प्रकार पुनः पुनः करने पर माया क्रोध और मान के भाग यथाक्रम से होते हैं। उसके बाद पहले घटाए हुए असंख्यात भाग मात्र द्रव्य के पल्ले के असंख्यात भाग मात्र खंड करके उनमें से एक खंड मात्र द्रव्य सम्यक्त्व का भाग होता है और शेष सब खंडों को लेकर सम्यक मिथ्यात्व का भाग होता है। पहला एक भाग अलग रखा था ना, जिस जो मिथ्यात्व और ये तीनों का भाग अलग रखा था, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और ये दो। अब यहाँ आलाप हम पढ़ लेते हैं। अभी तो
ये सभ्यत्व और सम्यक मिथ्यात्व का मिनिमम द्रव्य कभी होगा, जब भी वो उद्वेलना हो रहा है तभी होगा।
हाँ,
उद्वेलना की अपेक्षा ही लिया है ना यार,
उद्वेलना में होगा। सम्यक्त्व का भाग थोड़ा है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का भाग असंख्यात गुना है। हमने देखा हमेशा सम्यक मिथ्यात्व उससे असंख्यात गुना होते हैं। हाँ। क्षपणा में केवल वो उत्कृष्ट में ही अलग प्रमाण है। फिर तीसरे नंबर पर अनंत अनुबंधी मान का भाग असंख्यात गुना है, क्रोध का भाग विशेष अधिक है, माया का भाग विशेष अधिक है, लोभ का भाग विशेष अधिक है, मिथ्यात्व का भाग असंख्यात गुना है। पहले सम्यक मिथ्यात्व से अनंत अनुबंधी का भी असंख्यात गुना का, फिर अप्रत्याख्यान और मान का भाग असंख्यात गुना, उससे क्रोध का विशेष अधिक, माया का विशेष अधिक, लोभ का विशेष अधिक, फिर प्रत्याख्यानावरण मान का भाग विशेष अधिक। यहाँ पर भी विशेष अधिक में लिया, ये आठों को विशेष अधिक में ले। क्रोध का विशेष अधिक, माया का भाग विशेष अधिक, लोभ का भाग विशेष अधिक, फिर क्रोध संज्वलन का भाग अनंत गुना।
अनंत गुना
ये देशघाती है ना। देखो 13, 2, 15 इसके हो गए सर्वघाती के, दर्शन मोने के 3 और ये बाकी 12। फिर मान संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, पुरुष वेद का भाग विशेष अधिक है, माया संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, क्रोध मान के बाद पुरुष वेद लिया, नपुसक वेद का भाग असंख्यात गुना है, स्त्री वेद का भाग विशेष अधिक है, हास्य का भाग असंख्यात गुना है, रति का भाग विशेष अधिक है, शोक का भाग संख्यात गुना है, अरति का भाग विशेष अधिक है, जुगुप्सा का भाग उससे भी विशेष अधिक है, भय का भाग विशेष अधिक है, और लास्ट में संज्वलन लोभ का भाग विशेष अधिक है, क्योंकि जगन्य में उसका जो फिरते है अंतिम समय में लेना है उसको। इसी प्रकार सामान्य मनुष्यों में जानना चाहिए, आपका कहे ना जहाँ क्षपणा होती है वहाँ इसी बात होती है, मनुष्य पर्याप्तकों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें नपुसक वेद के आगे स्त्री वेद का भाग असंख्यात गुना करना चाहिए।
तो सामान्य मनुष्य में इसी प्रकार जानना चाहिए, तो ये उद्वेलक की अपेक्षा बात है सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की नहीं,
क्षपणा में होगी उसकी, दोनों में ले सकते शायद, अभी हम स्वामित्व में देखेंगे उसको। मनुष्यनियों में सम्यक्त से लेकर पूर्वोक्त विधान के अनुसार कहकर उसके बाद इस प्रकार कहना चाहिए, क्रोध संयोलन के भाग से आगे मान संयोलन का भाग विशेष अधिक है, माया संयोलन का भाग विशेष अधिक है, क्योंकि उसको पुरुष वेद का वहां नहीं लेना है ना। स्त्री वेद का भाग असंख्यात गुना है, नपुसक वेद का भाग असंख्यात गुना है, पुरुष वेद का भाग असंख्यात गुना है, हास्य का भाग संख्यात गुना है, इसके आगे कोई अंतर नहीं। यानी किस वेद के साथ श्रेणी चढ़ते उसके अनुसार उसके अल्प बहुत्व में भी वेरिएशन हो जाएगी। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। अश्विन
नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमायणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुप्रसावणम, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमायणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुप्रसावणम।